ओम शांति। ब्रुक नंबर 4 है आज। राज ऋषि अर्थात स्वराज्य के साथ साथ बेहद के वैरागी बनो। अपने को राज ऋषि समझते हो, राज भी और ऋषि भी। स्वराज्य मिला तो राजा भी हो, और साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी भी हो, इसलिए ऋषि भी हो। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी, तो दोनों ही हो। बेहद का वैराग्य है या थोड़ा थोड़ा लगाव है, अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं, ना राजा है ना ऋषि है। क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, लगाव हो नहीं सकता। अगर कहाँ भी संकल्प मात्र थोड़ा भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं कहेंगे। अगर लगाव है तो दो नाव में पाव हुआ ना, थोड़ा पुरानी दुनिया में, थोड़ा नई दुनिया में, इसलिए एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि दो नाव में पाव रखने वाले क्या होते हैं, ना यहाँ के ना वहाँ के। इसलिए राज ऋषि राजा बनो और बेहद के वैरागी भी बनो। 63 जन्म अनुभव करके देख लिया ना, तो अनुभवी हो गए, फिर लगाओ कैसा। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते हैं। सुनने वाले, सुनने वाला सुनाने वाला धोखा खा सकता है, लेकिन अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। तो दुख का अनुभव अच्छी तरह से कर लिया है ना, फिर अब धोखा नहीं खाओ। यह पुरानी दुनिया का लगाव सोनी हिरण के समान है, यह शोक वाटिका में ले जाता है। तो क्या करना है, थोड़ा थोड़ा लगाव रखना है। अच्छा नहीं लगता लेकिन छोड़ना मुश्किल है। खराब चीज को छोड़ना और अच्छी चीज को लेना मुश्किल होता है क्या? अगर कोई सोचता है कि छोड़ना है तो मुश्किल लगता है, लेना है तो सहज लगता है। तो पहले लेते हो, पहले छोड़ते नहीं हो। लेने के आगे ये देना तो कुछ भी नहीं है। तो क्या क्या मिला है वह लंबी लिस्ट सामने रखो। सुनाया है ना कि गीत गाते रहो, पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। तो यह गीत गाना आता है मुख का नहीं मन का। मुख का गीत तो थोड़ा टाइम चलेगा, मन का गीत तो सदा चलेगा। अविनाशी गीत चलता ही रहता है, ऑटोमेटिक है। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है। वैरायटी फूलों का बगीचा अच्छा लगता है ना, कोई कहाँ के कोई कहाँ के, लेकिन ये है एक मालिक है, एक के है और एक है। ये तो सेवा के अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हुए हैं, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होगी। अच्छा, तो क्या सुना, आज का मेन टॉपिक है राज ऋषि। तो राज ऋषि अर्थात क्या, एक तरफ राजा भी, एक तरफ ऋषि भी, एक तरफ भाग्य, एक तरफ त्याग, एक तरफ सर्व अधिकारी, एक तरफ बेहद का वैराग्य, एक तरफ न्यारा, एक तरफ सबका प्यारा। तो जैसे कि ये शब्द ही है राज और ऋषि। राजा मतलब सर्व खुशी का अधिकारी, और ऋषि एक तरफ की बेहद का वैरागी। तो जैसे कि ये ऋषि शब्द भक्ति में दिखाते हैं ना, जो ऋषि मुनि है, तपस्वी है, त्यागी आत्माएं हैं। तो ऋषि वर्ड का इंटरनेट पे सर्च किया तो उसमें मीनिंग दिया था ऋषि मतलब टू मूव, टू फ्लो, चलने वाले। और बताते हैं कि 4 वेदों में 20,000 से भी ज्यादा मंत्र है, और इन मंत्रों को के रचयिता कवि को कहते हैं ऋषि। तो उसमें 3 डिविजन बताए, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और देव ऋषि। तो राज ऋषि में बाबा जो एग्जाम्पल देते हमेशा वो है जनक राजा का, कि जनक राजा मतलब राजा होते हुए भी, सारी सुविधाएं होते हुए भी, वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए थे जहाँ पे उनकी स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज इतनी थी कि उनको ऋषि का भी टाइटल दिया गया, तो राज ऋषि। तो जैसे बाबा ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि राजा स्वराज्य अधिकारी, यानी कि मन बुद्धि संस्कार उसके वश में हो। तो जैसे कि ये हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। जब मन बुद्धि संस्कार, ये सूक्ष्म शक्तियां हमारी कंट्रोल में है, तो यहाँ पे आती है कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। जब सूक्ष्म शक्तियां हमारी कंट्रोल में है तब ऑटोमेटिकली स्थूल कर्मेंद्रिया भी कंट्रोल में होती है। तो यह स्वराज्य अधिकारी, दूसरा बाबा यहाँ पर ऋषि की बात कर रहा है, बेहद के वैरागी। तो बेहद के वैरागी में क्या कहेगा, जैसे कि बाबा हमेशा हमको बोलता है कि आपको साधनों के अधीन नहीं होना है। तो आज बाबा ने बोला कि तीन चीजों की बात की, अपनी देह से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से। तो जैसे कि वस्तुओं से, चीजों में हम अटके नहीं। बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे साधन होंगे तो हम पुरुषार्थ करेंगे, आज बस मिलेगी तो हम पांडव भवन जाएंगे। अगर हम अकेले रहते हैं तो हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है, अगर हम 10 के बीच में रहेंगे तो हमारा पुरुषार्थ इतना अच्छा नहीं चलेगा। तो हम साधनों में अटके नहीं। कभी कभार महारथियों के बारे में बताते हैं कि भाषण देने जा रहे हैं तो हमको कार चाहिए तो हम भाषण देने जाएंगे। तो हम अपने आप को चेक करें कि हम साधनों के कितने अधीन हो रहे हैं। एक क्लास में सुना था कि विवेकानंद राजाओं के महलों में रहकर अच्छा भोजन भी खाता था ठाट बाट से, और एक तरफ दिखाते थे कि वो झोपड़ी में रहते हुए सूखी रोटी भी खा रहा है लेकिन उतने ही आनंद से। तो हमारी भी आसक्ति इन सब में होना हो, जैसे कि भोजन आज पानीपुरी मिली 2 दिन पहले, तो पानीपुरी मिली तो सब बहुत खुशी खुशी से खाए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कल अगर बाबा हमको 4 रोटी दे या 4 रोटी दे तो भी हमारी सुख शांति कम ना हो, ये है वैराग्य। तो हम अपनी सूक्ष्म चेकिंग करें कि कहाँ कहाँ भटकते। तो ऐसे आप लोग भी अभी लिस्ट बताओ, जैसे कि एक भोजन हो गया, एक साधन हो गया, दूसरी ब्राह्मण आत्माएं कहाँ कहाँ अटकती है मान शान में। ये बहुत सूक्ष्म चीज है कि उसको मान शान चाहिए, सेवा के चांस चाहिए। कभी कभी बोलते कि नहीं, अरे ये म्यूजियम में क्या सेवा करनी है, हमको तो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में सेवा करनी है। तो ये है अटकना, अपनी सेवाओं में अटकना, जबकि ये सारे हमारे श्रेष्ठ कर्म है लेकिन हम इसमें भी अटक जाते हैं। और
हमारे पर थोप रहे
नहीं, टाइम पूरा नहीं करना है, डिस्कशन करना था इसीलिए बोल रहे। हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ खींची जाती है, जैसे ब्राह्मणों के लिए भोजन में खींची जाती है ना, घूमना फिरना, और
टीवी
मोबाइल,
अच्छे
अच्छे ड्रेस पहनना, नींद में। जैसे बाबा ने यहाँ पर उदाहरण दिया ना लगाव के बारे में, बाबा ने बात की कि आपका लगाव कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया वो सोनी हिरण, तो सीता को कैसे फंसा के लेके जाता है रावण। वैसे जैसे भाई ने बोला कि मोबाइल भी, मतलब हमको बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अच्छे बड़े बड़े मोबाइल खरीद लेते हैं कि हम इस पे मुरली पढ़ेंगे, हम इस पे व्हाट्सएप पे ये भेजेंगे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हमारी फिंगर कहाँ कहाँ टैप होती है कि बहुत सारी व्यर्थ चीजों में भी हम चले जाते हैं, जबकि दिखती बड़ी अच्छी सी है, ऊपर से है हमारी यूजफुल चीज, लेकिन हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। और ठहर जाते एक मुरली में बाबा ने लगाव के बारे में बात की, उसमें लगाव और स्वभाव के बारे में बात की। तो लगाव और स्वभाव ये ब्राह्मणों की सबसे बड़ी कमजोरी है। बाबा ने बोला कि वहाँ पर शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। लगाव होता है आत्माओं को अपनी शरीर से, और वो हमको अशरीरी बनने नहीं देती। तो बाबा ने अच्छा उदाहरण दिया कि लगाव तो मतलब बंदर का उदाहरण दिया ना, तो बंदर को कैसे उमर जाता लेकिन उसका मेरापन नहीं जाता। तो जैसे कि महावीर को चित्रों में पूंछ दिखाते ना, बंदर की कैसे पूंछ दिखाते, तो बाबा ने वहां पर कहा कि जब तक ये पूंछ नहीं जलेगी ना, तब तक ये पुरानी दुनिया लंका भी नहीं जलेगी और नई दुनिया नहीं आएगी। तो उसमें इतना अच्छा वाक्य था कि जब तक सब महावीरों की लगन की अग्नि को आग नहीं लगेगी, तब तक ये पुरानी दुनिया नहीं जलेगी और नई दुनिया नहीं आएगी। लगाव के बारे में 72 की मुरली है, बाबा ने बताया। और
लगाव में बाहर की चीजें जो
जैसे अपन ने तीन बोली ना यहाँ पे, वस्तु, व्यक्ति और स्वयं। तो वस्तु तो हमने बहुत उदाहरण दिए। व्यक्तियों में ब्राह्मण दूसरों की सुंदरता से इतना आकर्षित नहीं होते जितना उनकी विशेषताओं में अटकते। कह रही है तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस बहन में कितनी अच्छी विशेषताएं हैं। लेकिन बाबा ने बोला है ना कि भाई बहनों को नहीं देखो, बाप को देखो। और भले उनमें विशेषताएं है, भले उनका पुरुषार्थ हम देख रहे हैं वो उठा ले, लेकिन उनमें अटक ना जाए, उनके पीछे ना पड़ जाए। तो ये हुई व्यक्तियों में अटकने की बात। दूसरी स्वयं की देह में, स्वयं में हम कभी कभार, एक बाबा ने होली में बोला कि आत्माएं अपनी विशेषताओं में अटकती है। कभी कभार हमको हमारे पुरुषार्थ का भी घमंड आ जाता है। हमारा योग तो बहुत अच्छा लगता है, हम जब बैठते तो तुरंत अशरीरी हो जाते हैं और बाजू वाला इतना हिल रहा होता है, तो हमको ऐसे लगता है कि अरे ये तो उसकी तो देह पे ही कंट्रोल नहीं, तो उसका मन पे कितना कंट्रोल होगा, है ना। स्थिति मतलब उसकी कैसी होगी, जब तू इतना हाथ पैर हिला रहा है तो कितने हलचल में वो, ये सब हम सोचते हैं ना। तो ये हम हमारे स्वयं की विशेषताओं में ही अटक रहे हैं, हमको हमारी विशेषताओं को इतना घमंड होता है। दूसरा, हमको हमारे पुरुषार्थ पर भी थोड़ा घमंड आता है ना कि हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, हम तो चिंतन भी करते हैं, इनको तो चिंतन करने ही नहीं आता, इनको तो बस मुरली सुना और निकले, और हम तो मतलब इनसे आगे। तो ये है अपने आप में फंसना, तो ये भी व्यक्ति को नीचे लाएगा ना। तो ये है वस्तुओं से लगाओ, व्यक्ति से लगाओ, स्वयं से लगाओ। और संबंधों में फंस जाते हैं, हाँ, लौकिक संबंधियों को छोड़ दिया। बहुत गर्व से कहते हैं कि हम घर नहीं गए 10 साल से, 15 साल से, 30 साल से, तो वो तो जंजीरें तोड़ दी हमने। लेकिन यहाँ पर आके जो हम संबंध बना रहे हैं, तो हम उनमें ही अटक रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा। हम बड़े उसको यज्ञ सेवा का नाम देते हैं हम उसको, फिर कि हम यज्ञ सेवा कर रहे हैं, हम ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको ये भी चेकिंग करनी है अपनी कि हम वो छोड़ के आ रहे तो यहाँ तो अटक रहे ना। दूसरा ये था कि हम बड़ी बड़ी सेवाओं में अटकते हैं, और छोटी छोटी जैसे कि भाषण देने की सेवा हो या स्टेज पे कोई सेवा मिल जाए तो बहुत खुश होते हैं, और दूसरा अगर किचन में सेवा मिल जाए या झाड़ू मारने की सेवा मिल जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमारा सुख और दुख का जो बैरोमीटर है ना, वो इस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इधर हम यज्ञ सेवा के महत्व को भूल जाते हैं यहाँ पर, तो भी आत्मा नीचे आती है। तो ये भी एक है। और लगाओ है और कुछ? आज की मुरली में भी बाबा ने भाग्य की बात की। जैसे जब भी ये वर्ड राज ऋषि आता है ना, तो उधर हम भाग्य और त्याग की, जैसे लास्ट संडे की मुरली में भी बाबा ने भाग्य और त्याग की बात की ना, कि हमसे भाग्य नजर आए, हमारा त्याग नजर नहीं आए। तो लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने बोला कि थकावट दूसरों को ना दिखे, मेहनत का अनुभव ना करे, मोहब्बत में पुरुषार्थ करे, प्रारब्ध का अनुभव हो और स्नेह के झोले में झूलते हुए है ना पुरुषार्थ कर रहे हो। तो हमारा भाग्य लोगों को नजर आए, हमारा त्याग नहीं। और आज भी बाबा ने ब्राह्मणों के भाग्य की लिस्ट निकाली, क्या क्या थी, तिथि, तारीख, समय, राशि, कुल, धर्म, ऑक्यूपेशन, पोजीशन। तो बाबा ने बोला ना, दिशा, तिथि, तारीख, जो बाप की अवतरण की तारीख वही तुम्हारी तारीख। धर्म में बाबा ने बोला ब्राह्मण छोटी, और कुल में बोला ईश्वरीय कुल, पोजीशन में बोला मास्टर सर्वशक्तिवान, ऑक्यूपेशन विश्व कल्याणकारी, राशि में बोला विश्व कल्याणकारी, दशा संपत्ति, संपत्ति में बोला ना कि अखूट और अविनाशी खजानों की संपत्ति। तो आज भी बाबा ने भाग्य गिनाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वराज अधिकारी है तो मन, बुद्धि, संस्कार सब अपने वश में है, लगाव हो नहीं सकता। तो यहाँ बाबा ने बात की, थोड़ा पुरानी दुनिया में, थोड़ा नई दुनिया में तो नहीं है। तो ये हम हमारी चेकिंग करें कि आ तो गए, हाँ, तो जैसे कि वो नाव का ना घाट के। इसलिए एक बाप दूसरा न कोई, क्योंकि दो नाव में पाव रखने वाले क्या होते हैं, न यहाँ के न वहाँ के। इसलिए राज ऋषि राजा बनो और बेहद के वैरागी भी बनो। जैसे कल की मुरली में बाबा ने बोला ना कि ये दुनिया हमको कैसी नजर आई शमशान, जैसे कि सब मूर्ते है ना। एक हाँ एक मुरली में ऐसे ही बाबा ने बोला कब्रिस्तान, राजा ऋषि भी उसको कब्रिस्तान नजर आए, ये दुनिया शमशान, लेकिन सामने उसके परिस्तान के नजारे भी दिखे उसको। तो दोनों चीज साथ में, एक तरफ खुशी का अधिकारी और एक तरफ उसकी त्याग।
उसको गुस्सा आ गया, उन्होंने वशिष्ठ के साथ लड़के को मार डाला। फिर लास्ट में एक दिन एक नमक उसको खाने में नहीं मिला, तो उनको पूछा बोला जाओ उनके घर से ले आओ। वशिष्ठ ने उनके पति को बोला, वो सुन रहा था, वो उस दिन उसको मारने आए थे, उसको बोला इनका हमने सात लड़के को मार दिया, क्योंकि मेरे घर में नमक मांगने के लिए भेज रहे, उसके अंदर तो क्रोधा की कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम आगे पाँव पड़ता है, मैंने वो सब भूल किया है, मुझे अंदर जो क्रोध था ना अभी तक किया है। तो बोला आज तुमको ये साइकिल करनी है, उसी के आप लग रहे।
तीसरा जन्म अनुभव करके देख लिया ना, तो अनुभवी हो गए, फिर लगाओ कैसा। यहाँ पे बाबा ने बोला अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते हैं, जिसको अनुभव हो गया वो धोखा नहीं खाएगा, सुनने वाला सुनाने वाला धोखा खा सकता है। जैसे आग में हाथ डाल दी तो पता है कि वो जलेगा ही हाथ, अनुभवी हो गए तो वापस नहीं डालेंगे। आज की मुरली में बाबा ने जो वो पैराग्राफ एक्सप्लेन किया गुड़ियों का खेल, उसमें भी देखो हम ये सारी ज्ञान की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन ये ज्ञान की पॉइंट्स हमको जब याद आएंगी, मतलब हम सबने एक्सपीरियंस किया ना, जो बाबा ने आज बोला कि भक्ति में दिखाते हैं कि गुड़ियों को सजाते हैं, उसमें प्राण भरते हैं, फिर उसको डुबो देते पूजा करके, और फिर आप क्या करते हो। बाबा ने हमको एक्सप्लेन किया आज कि आपकी ईर्ष्या अनुमान की गुड़िया, ये सब वहम की गुड़िया, इस सब आवेश की गुड़िया, इसकी बातों की आप मूर्ति बनाते हो, फिर उसको आप सजाते हो, ज्ञान की पॉइंट्स से आप उसको सजाते हो, उल्टे सुलटे ज्ञान की पॉइंट्स की भोग लगाते हो, और फिर क्या करते हो, भोग कच्चा भोग लगाते हो, फिर उसको पक्का भोग लगाते हो, और फिर उसके बाद दूसरों को भी खिलाते हो, परिवार को कुटुंब को खिलाते हो, और फिर उसको फिर बाद में हमको याद आता है ये सब हम रॉन्ग कर रहे हैं। तो फिर स्वोन्नति की लहरों में हाई जंप दे के बीती सो बीती करके फिर हम उसको खत्म कर देते, पूरा काम करते हैं। तो कितने अनुभवी बनते हैं पूरे प्रोसेस में, कितने अनुभवी बनते हैं। तो अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, तो ये पॉइंट हमको याद आनी चाहिए ना कि हाँ भक्त बाबा ने ये सब बोला है, तो जब हमारा व्यर्थ चल रहा है तो तुरंत ये पॉइंट याद आए और हमारा व्यर्थ वहां स्टॉप हो। तो इसीलिए बाबा ने यहाँ पे कैसे बोला, अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनने वाले सुनाने वाले धोखा खा सकते। लेकिन तो दुख का अनुभव अच्छी तरह से कर लिया है ना, फिर अब धोखा नहीं खाओ। ये पुरानी दुगाओ दुनिया का लगाओ सोनी हिरण के समान है, ये शोक वाटिका में ले जाता है। साकार मुरली में बार बार एक पॉइंट आता है कि ये दुनिया की हर चीज तुमको दुख देने वाली है, ये दुनिया का हर व्यक्ति तुमको दुख देगा, ये हम पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम इसको कितना याद करते हैं। जब हमसे कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा या अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा, तो हमारा पूरा अटेंशन उसके ही कमजोरियों पर या उसके ही अवगुणों पर जाता है। लेकिन अगर हम यही पॉइंट को याद करें मुरली की, जो बाबा ने बोला वो राइट है ना, वो कुछ रॉन्ग तो नहीं है, जो कर रहा है वो बराबर है। तो ज्ञान की पॉइंट्स को जब हम यूज करेंगे ना, तब वो हमारी प्रॉपर्टी बनती है, वरना मुरली बड़ी अच्छी है। आज की मुरली भी बहुत अच्छी है, हम सब पढ़ेंगे, हम सब उस पर चिंतन भी करेंगे, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थी है ना सब, यहाँ तो चिंतन भी करेंगे। लेकिन अगर उसको हम यूज नहीं करेंगे तो वो ज्ञान की पॉइंट हमारी प्रॉपर्टी नहीं बनती। इसलिए आज भी जैसे बाबा बोल रहे हैं, अब ये एग्जांपल भी हमने बहुत बार सुना, ये पुरानी दुनिया का लगाव सोनी हिरण के समान है, ये शोक वाटिका में ले जाता है। तो कितना हम इस पर अमल करते, तो क्या करना है? थोड़ा थोड़ा लगाव रखना है। अच्छा नहीं लगता लेकिन छोड़ना मुश्किल है। खराब चीज को छोड़ना और अच्छी चीज को लेना मुश्किल होता है क्या? अगर कोई सोचता है कि छोड़ना है तो मुश्किल लगता है, लेना है तो सहज लगता है, तो पहले लेते हो, पहले छोड़ते नहीं हो। लेने के आगे ये देना तो कुछ भी नहीं है। लास्ट संडे की होली में बाबा ने दो लड्डुओं के बारे में बात की थी कि बच्चे दो लड्डू लेते हैं तो जैसे कि विस्तार में चले जाते हैं और सार को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे तो क्या क्या मिला है वो लंबी लिस्ट सामने रखो। तो ये होमवर्क कर सकते हैं, लंबी लिस्ट सामने रखो। सुनाया है ना कि गीत गाते रहो, पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। तो ये गीत गाना आता है मुख का नहीं मन का गीत। मुख का गीत तो थोड़ा टाइम चलेगा, मन का गीत तो सदा चलेगा। अविनाशी गीत चलता ही रहता है, ऑटोमेटिक है। फिर दूसरे पैराग्राफ में बाबा ने बात किया कि ये वैरायटी ग्रुप है। वैरायटी फूलों का बगीचा अच्छा लगता है ना, कोई कहाँ का कोई कहाँ का, लेकिन है एक मालिक है, हम सब है एक के। आज भी डबल विदेशियों को बाबा ने बोला ना कि सब अगर लाइट हाउस माइट हाउस बन के सेवा करे तो ये ग्रुप कैसे बन जाएगा, और आपको भी भिन्न भिन्न जगहों पे जाके संदेश पहुंचाना है। तो दूसरा बाबा ये वाक्य बहुत अच्छा लगा मुझे, एक के है और एक है, एक के है हम और एक है। जो मैं अपने रूम के सामने देख रही थी कि एक हनी बी का छत्ता लगा हुआ था, तो मुझे लगा जैसे कि ये जो हनी कोम है वो बाबा है और ये जो सारी हनी बीज है वो सब हम है। तो एक के है और एक है, वो हनी बीज कितना उड़ के यहाँ वहां जाती, बस पहुंचती बराबर उधर ही हनी लेके। तो हम एक के है और एक है, ये तो सेवा के अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हुए है, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होगी। अच्छा, तो ये मुरली से मैंने कुछ स्वमान निकाले थे कल, जैसे कि मैं राज ऋषि हूँ एक, फिर मैं बेहद के वैरागी हूँ, मैं लगाव मुक्त आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, और मैं भगवान के बगीचे का फूल हूँ। जैसे बाबा ने बोला ना, वैरायटी फूलों का बगीचा है लेकिन माली सिर्फ एक है, और ये भी एक है, मैं एक के और एक है, अनुभवी मूर्त हूँ।
ओम शांति। इस मुरली में स्वर्ण मृग की बात है, आपको याद होगा रामायण में दिखाते हैं कि राम सीता और लक्ष्मण तीनों पंचवटी में हैं। अभी सीता बाबा ने कहा स्वर्ण हिरण के वजह से के लगाव के वजह से सीता कहाँ गई, शोक वाटिका में। सीता से ऐसी कौन सी भूले हुई, सीता अर्थात आत्मा, ऐसी कुछ मूलभूत भूले हैं जो सीता ने की, उसके वजह से सीता शोक वाटिका में पहुंची। सबसे पहले तो उसको स्वर्ण मृग दिखा, वो हिरण दिखा उसको, तो उसने उसकी बुद्धि उसमें गई सबसे पहले, तो जबकि स्वयं भगवान उसके साथ है, श्री राम उसके साथ है, उसके बाद भी उसकी बुद्धि कहाँ गई, किसी और वस्तु में, व्यक्ति में या बाहर की चीज में गई, और उसने कहा कि मुझे ये हिरण चाहिए। तो सबसे पहले लगाव उत्पन्न हुआ, फिर इच्छा उत्पन्न हुई कि ये मुझे चाहिए। श्री राम ने पूछा ये तुम्हें क्यों चाहिए। अब जब उल्टी इच्छा उत्पन्न होती तो उसमें वो तर्क दे रही है, वो क्या कहती है कि हम इस हिरण को वापस अयोध्या ले जाएंगे, हम इसको घुंघरू पहनाएंगे तो, और ये जो छम छम करके चलेगा तो माताएं कितनी प्रसन्न होगी। जैसे आज कहा ना बाबा ने, ये जो बातें हैं, रहम की बातें, रोग की बातें, अनुमान की बातें, आवेश की बातें, ये जो बातें क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनको जन्म देते हैं, जन्म देना, फिर उसमें प्राण भरते, प्राण कैसे भरते, यही सत्य है, ये उसका ये करना कि यही सत्य है। तो ये जो है ना, वो भी यहाँ तर्क दे रही है कि क्यों जरूरी है, वो उस बात का तर्क दे रही है वहां पे कि ये कैसे जरूरी है। फिर भरत को हम ये भेंट में देंगे, हमारे वनवास का यादगार भरत को हम भेंट में देंगे, तो श्री राम कहता है ठीक है, परंतु लक्ष्मण वहां कहता है, क्या कहता है कि ये प्रकृति के विरुद्ध है, ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, ऐसा कोई स्वर्ण हिरण हो ही नहीं सकता। परंतु राम जी वहां उसको कहता है कि ज्ञान और ज्ञानी और विज्ञानियों के परे भी सृष्टि में बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा ठीक है, पर ये जब दोनों तर्क वितर्क कर रहे हैं राम और लक्ष्मण, तब सीता और उतावली हो रही कि वो कहीं चला ना जाए, तो सबसे पहले उसके अंदर उत्पन्न हुआ लगाव, एक लगाव के बाद में आकांक्षा, इच्छा, आकर्षण कहो, लगाव कहो, ये कहो, फिर इच्छा कि ये मुझे चाहिए, फिर तीसरा उतावला बनाया कि जल्दी जाओ नहीं तो ये चले जाएगा, आप दोनों इधर बहस ही करते रहोगे वो चला जाएगा। उसके बाद में राम जी तो चले जाते, उसके बाद में वो दिखाया है कि वो मृग, वो मृग तो एक्चुअली कौन होता है, रावण का भेजा हुआ मारीच जो उसका मामा होता है, उसको रावण ने भेजा होता है, तो वो मृग उसको कई दूर तक ले जाता है, और जब श्री राम उसको मारते हैं तो वो क्या करता है, आवाज बदलकर श्री राम की आवाज में क्या कहता है, हे सीते, हे लक्ष्मण, तो माया, परंतु आवाज किसका निकाल रही है, भगवान का। जगदीश भाई ने अपनी किताब में लिखा है कि भगवान को पहचानना बहुत कठिन है, परंतु माया को पहचानना उससे भी कठिन है। भगवान को तो पहचान दिया, परंतु माया को पहचानना उससे भी कठिन है, और माया क्या है उसकी एक परिभाषा दी है उन्होंने अपनी किताब में, हर वो चीज, हर वो बात जो हमें ईश्वर और ईश्वरीय ज्ञान से हटाती है इज नोन एज माया। हर वो चीज, इसको याद करने जैसी बात है, हर वो चीज, हर वो बात जो हमको ईश्वर और ईश्वरीय ज्ञान से हटाती है वो माया। तो उधर से मारीच चिल्लाता है कि हे सीते, हे लक्ष्मण, तो सीता यहाँ पर और विवल हो जाती है और ही आतुर हो जाती है, वो लक्ष्मण से कहती है कि तुम सुन नहीं रहे हो कि तुम्हारे भैया पुकार रहे, मतलब यहाँ अविश्वास उत्पन्न हुआ है उसमें। राम लक्ष्मण कहता है इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो कि श्री राम को पराजित कर सके, कोई देव नहीं, कोई दानव नहीं, कोई असुर नहीं, किसी की इतना सामर्थ्य नहीं है कि राम के ऊपर विपत्ति आ सकती है उसके वजह से। पर सीता क्या कहती है कि नहीं, ये राम की ही आवाज है। तो जो आत्मा मोह से ग्रसित है, जहाँ आकांक्षाएं उत्पन्न हो गई है, वहां अविश्वास भी उत्पन्न हो जाता है, उसको अपने स्वामी के सामर्थ्य पर इतना विश्वास कम हो गया उसका, वो ये नहीं समझ पा रही है कि राम कौन है, सारा विश्व उसके उसके अधीन है, सारा जगत उससे रक्षा मांगने आता है, अब वो संकट में कैसे पड़ सकता है, तो उसमें अविश्वास उत्पन्न होता है। और जब लक्ष्मण कहता है कि नहीं, ये राम, ये कोई छल है, ये कोई माया है, ये राम का आवाज है ही नहीं, परंतु वो फिर उसके बाद में और एक स्टेप आके जाती है, वो क्या कहती है, उसके उसके ऊपर दोषारोपण करती है कि तुम जिद्दी तो पहले से ही हो, पर अभी जब तुम बहुत डिंगे हाँकते हो तुम, तो कि अपने भैया के सामने मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, क्या हूँ, क्या हूँ, परंतु अब जब संकट की घड़ी आई तो चूहे की तरह बिल में घुस के बैठ रहे हो, अभी तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें जाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए, और तुम अपनी ही बात बता रही हो। फिर वो रोना भी चालू करती है, मतलब उसमें फिर आत्मा में दुख भी आ गया क्योंकि वो उसकी बात सुन नहीं रहा है। तो देखो, मोह चालू हुआ, फिर उससे क्या क्या हो रहा है, अविश्वास, उसके बाद में क्रोध भी आया, फिर वो उसके ऊपर दोष भी लगा रही है कि जिद का संस्कार तुम्हारा पहले से ही है और तुम तो कभी भी सुनते नहीं हो, और उसको फिर वो धमकी भी देती है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। एक आर्य नारी अपने पति की रक्षा कैसे करती है वो जानती है, मुझे अपना धनुष बांध दे दो, जब वो नहीं देता तो कहता मैं धनुष बांध तुम्हारा, मैं बिना धनुष बांध के जाऊंगी। तो ये सब कर करके वो लक्ष्मण को विवश करती है वहां से जाने के लिए। किसी को विवश करना अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, ये भी श्रीमद् के विरुद्ध है। लक्ष्मण तो जाता है, परंतु जाने से पहले एक लकीर खींच के जाता है और कहता है कि ये दीवार है, इस दीवार के अंदर कोई आ नहीं सकेगा, इसके लिए आप यहाँ से बाहर नहीं जाना। और जाने से पहले वो वन के देवता और वन के जो पशु पक्षी जो है उनसे भी निवेदन करता है, उनसे भी कहता है कि सीता माँ की रक्षा करना। वो तो निकल जाता है। अभी उसके बाद अंतिम भूल सीता से, ये किसकी लकीर है, ये मर्यादाओं की लकीर है। ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादा है उनको अगर हम पार कर दे, क्रॉस कर दे, तोड़ दे, तो रावण उठाकर सीता उधर लेके जाएगा। और रावण भी किस रूप में आया, रावण रावण के रूप में नहीं आया, किस रूप में आता है रावण, महाज्ञानी प्रकांड पंडित के रूप में। माया किस रूप में आती है, ज्ञानियों के रूप में आती है। माया अगर एकदम अज्ञानी के रूप में आए तो हम तो पहचान लेंगे, माया कोई लेबल लगा के नहीं आती है। रावण अपने दशानन रूप में नहीं आया, रावण अपने रावण के रूप में, लंकापति के रूप में नहीं आया। रावण रावण किस रूप में आया है? एक साधु के रूप में आया है, एक पवित्र आत्मा के रूप में रावण आ रहा है, एक पवित्र वस्त्र धारण करके रूप बदल के, क्योंकि माया बहुरंगी है, बहुरूपी नहीं है। महाठगनी हम जानी, कबीर कहता है माया महाठगनी हम जानी। वो उस रूप में आया है और सीता को भिक्षा मांग रहा है, और भिक्षा देने के लिए सीता ने क्या किया? फिर लकीर का उल्लंघन, उससे बाहर निकली और आते ही रावण ने अपहरण कर लिया अपने पुष्पक विमान में। पुष्पक विमान में ले जाता है रावण, याद रखना। कैसे लेके जाता है? पुष्पक विमान में बिठा कर ले जाता है उसे, और मार्ग में जो भी आता है फिर उसकी चिंता नहीं करता, चाहे वो जटायु हो तो उसके पंख काट दिए। फिर सीता चाहे कितनी भी चिल्लाए और बिलखती और रोती रहे, वो सुनता नहीं है, फिर उसको पहुंचा ही देता है कहां? शोक वाटिका में। चाहे फिर उसने अपने जेवर भी गिराए ताकि राम आए तो उसको पहचाने। उसके बाद में सारा रामायण का आधार क्या है? ये कहानी यहां से। उसका भी आधार एक और एक चीज है कि रावण ने मरीच को क्यों भेजा, ये मोह की बात आ रही है ना यहाँ पे। मोह उत्पन्न हुआ उसका, वो मोह का भी कारण क्या है? और एक कारण है, काम विकार। कैसे? कैसे? शूर्पणखा। शूर्पणखा के हृदय में काम विकार उत्पन्न होता है जब सुकुमल दो कुमारों को वो देखती है, श्री राम को वो देखती है, तो उसके हृदय में काम की जागृति होती है, और वो प्रणय निवेदन कहते हैं उसे, लेकर श्री राम के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे विवाह करना है। वो कहता है मेरे तो ये है, तुम उसके पास जाओ, लक्ष्मण के पास, वो खाली है। तो वो उधर जाती है, फिर वो इधर भेजता है, फिर वो इधर जाती है, और फिर उसको क्रोध आता है लक्ष्मण को, और उसको भी क्रोध आता है, तो उसकी नाक कर देता है, और फिर वो जाती है खरदूषण के पास, खरदूषण को भी हरा देता है श्री राम। फिर वो जाकर रावण को कहती है कि वहां पर जो रावण मस्त है नृत्यांगनाओं के बीच में, वहां पर वो कहती है कि तुम यहाँ लगे हुए और देखो तुम्हारी बहन का क्या हाल हो गया, उसने मेरा ये हाल कर दिया, तो अभी तुम कुछ करो। और वो ये भी कहती है कि उसके साथ जो स्त्री है वो बड़ी बड़ी सुंदर है। तो शुरुआत हुई काम विकार से, और फिर उसके बाद में रावण के हृदय में भी काम विकार या क्रोध या प्रतिशोध की अग्नि जलती है। उसके बाद में वो मारिच को विवश करता है अपने मामा को कि जाओ और सीता को मोहित करो। तो पहले काम और फिर क्रोध इधर, और फिर उसके बाद में मोह उत्पन्न कराता है सीता के हृदय में। पहले मोह उत्पन्न होता है, सीता आकर्षित होती है, अविश्वास, ये सारी बातें एक करके एक के बाद एक सीता में उतावलापन, क्रोध और फिर दुख, और फिर अंत में सीता रेखा को पार करती है, और फिर रावण पुष्पक विमान में बिठाकर शोक वाटिका में ले जाते हैं। तो ये कहानी रामायण की नहीं है, ये कहानी आत्मा की है, यहाँ की है। ये रामायण हमारी रामायण की कहानी है, यहाँ से ही सारा रामायण उधर जाकर बना। अभी देखो एक ही परिवार के दो सदस्य, एक की बात कर रहे हैं बाबा राजऋषि। राजऋषि कौन है? राजा जनक। और सीता कौन है? सीता की भी बात है, उसी की बेटी, एक जनक एक जानकी, एक विदेह एक वैदेही। सीता को वैदेही कहा जाता है। एक मिथिला का राजा है, वो मिथिलेश्वरी कहा जाता है सीता को। एक है विदेह अवस्था में रहने वाला राज ऋषि, राज्य करते हुए भी वो ऋषि है, अनासक्त है, निर्लिप्त है, किसी के कोई प्रभाव नहीं है उसके ऊपर, रास और रंग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। नृत्यांगनाओं के बीच में है, अप्सरा है, और वो जो नर्तकी है वहां नाच रही है, परंतु वो उनसे प्रभावित नहीं है। उसे जीवन का लक्ष्य पता है। देह में सदेह होते हुए भी वो विदेही है, सदेह स्थिति, सदेह में वो जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहा है। ये राजा जनक की स्थिति है। कितने ही योगी और कितने ही सन्यासी और कितने ही महागुरुओं ने अपने शिष्यों को राजा के जनक के पास भेजा ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए। तो एक ही परिवार के दो लोग, एक तो विदेह राजा जनक जिसका राज ऋषि के रूप में गायन है, और दूसरी उसी की बेटी सीता जो कि आकर्षित हुई, प्रभाव में आई, लगाव में आई, और फिर बंधन में फंसी। और जिसे छुड़ाने के लिए भगवान को आना पड़ा, और भगवान ने किसकी सहायता ली फिर? बंदरों की। तो ये जो गायन है, लगाओ ना अपने में लगाओ, ना व्यक्ति में लगाओ, ना ही वस्तु में लगाओ। वस्तु के लगाव को आसक्ति, मनुष्य के लगाव को मोह, इस तरह से कहा जाता है। तो एक तरफ राज ऋषि अर्थात ऋषि अर्थात वैराग्य, वैराग्य अर्थात इन तीन चीजों से वैराग्य, और राजा अर्थात स्वराज्य कहा भगवान ने। राजा अर्थात मन बुद्धि और संस्कार अपने वश में हो, ये एक चीज। तो एक तरफ राजा और एक तरफ ऋषि। तो हमारा समान क्या है? मैं राज ऋषि हूँ, मैं अनुभवी आत्मा हूँ, मैं लगाओ मुक्त आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। निरंतर इन बातों का स्मरण करते रहे। अच्छा, ओम शांति। अभी कल है माता जी, क्या टाइटल है? क्या टाइटल है? बहुत छोटा सा है, ग्रुप नंबर 5। सदा एक स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले ही तपस्वी मूर्त हो, खास आपके लिए ही। आप ही एक रस और आप ही तपस्वी मूर्त हो। ऐसे सोचो कि जो ग्रुप को पढ़ते हो, ऐसे सोचो कि ये मुरलिया चली है 79 की शायद मेडिटेशन हॉल में, कि उस ग्रुप में मैं स्वयं बैठा हूँ, अव्यक्त बाप दादा सामने है, मैं स्वयं हूँ, और ये जो ग्रुप का जो हम पढ़ने वाले, ये मेरे लिए पढ़ा सुनाया जा रहा है। उस अनुभूति के साथ उसको सुनो, पढ़ो और फिर यहाँ सुनो, तो उसका स्वरूप हम बनेंगे। ठीक है, एब्सेंट नहीं रहना, आएंगे ना। तपस्वी मूर्त आएंगे, और उसके बाद फिर अरविंद भाई का है, अरविंद भाई का उसके आगे का ग्रुप है ना। कौन सा ग्रुप है? 6th ग्रुप, वो भी छोटा सा ही है। अच्छा, ओम शांति।